ओम शांति। सभी के दिल में मेरा एक बाबा दूसरा न कोई गीत बज रहा है ना। सभी बाबा से मंगल मिलन मनाने के लिए आए हैं। पुराना वर्ष विदाई ले रहा है, नया वर्ष शुरू होगा और बाबा की वर्तमान समय की साकार मुरलियों में विशेष जो वरदान हम सुन रहे हैं, बच्चे बाबा के स्नेह में समाये रहो। कल बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो मैं समझता हूँ इस सब्जेक्ट में तो बाबा के सभी बच्चे पास हैं ना। बाबा से अटूट प्यार हम सब का है, तब तो भाग भाग करके बाबा से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। व्यवस्थाएं कितनी भी हों, कैसी भी हों, ठंडी कितनी भी पड़ती हो, फिर भी इतने सब बाबा के बच्चे बाबा से मिलने के लिए पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं। जरूर ये बाबा के प्यार की, स्नेह की निशानी है। हम सब का बाबा से प्यार है और बाबा का हम बच्चों से प्यार है। स्नेह को इमर्ज रखना, तो आज बाबा ने कहा स्नेह के सागर में समा जाओ तो ये स्नेह आपके लिए छत्र छाया बन जाएगा और इस छत्र छाया के अंदर माया आ ही नहीं सकती, प्रवेश कर ही नहीं सकती। ऐसा अनुभव जब हम बाबा के प्यार में स्नेह में खो जाते हैं, कैसे प्यार इमर्ज करते हैं। बाबा ने हम सबको जो इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, इतनी प्राप्तियां कराई हैं इस कलयुगी तमोगुणी दुनिया के बीच में, हम सबको पवित्र योगी निर्मल सतोगुणी बनाया है, हमारी जीवन परिवर्तन की है। खान पान, रहन सहन, बोल चाल, जब से हम सब बाबा के बने, बाबा ने संपूर्ण परिवर्तन कर दिया। क्या थे और क्या बना दिया, तो आज की मुरली में था बच्चे याद करो क्या थे क्या बन गए, क्या बनने वाले हैं, तो पूरा चक्र याद आ जाएगा। कल शूद्र थे, आज ब्राह्मण हैं और कल देवता बन जाएंगे। तो हम सबको बाबा मनुष्य से देवता बनाने की इतनी सुंदर पढ़ाई, श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। तो जरूर बाबा ने जो ऐसी जीवन दी है तो उसके प्रति दिल में क्या होता है ना माताएं, क्या होता है, स्नेह उमड़ता है। स्नेह में बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे स्नेह में तो प्यार के आंसू आ जाते, नैन गीले हो जाते। तो हम सब बाबा की स्नेही बच्चे, स्नेह की निशानियां हमारे जीवन में प्रैक्टिकल क्या दिखाई देंगी। स्नेही की पहली निशानी क्या होगा, स्नेही की पहली निशानी है कुर्बानी। जिससे स्नेह होता है उसके ऊपर, उसकी बातों पर, उसकी शिक्षाओं पर अपने जीवन भी कुर्बान कर देते हैं। अगर बाबा से हमारा जिगरी प्यार है, स्नेह है, तो बाबा की आज्ञाएं सिर माथे है। जो कुछ बाबा ने कहा है उसमें कोई भी प्रश्न नहीं है, कोई भी संकल्प नहीं उठते कैसे क्यों कब कहां कैसे क्या होगा, जो बाबा ने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। यही सनेही की निशानी है ना, कुछ भी त्याग करना पड़ता है। आज बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेला अमृत पान करना नहीं छोड़ना, तो भले कितनी भी ठंडी पड़े कुछ भी हो जाए नींद का त्याग करके सभी अमृत वेले का योग करते हैं। करते हो ना सभी, सभी अमृत वेले का योग करते हो? जो करते हो हाथ उठाओ देखें तो। अच्छा सब पास है इसमें, वाह। तो बाबा कितना आपको दुआएं देगा, खुश होगा कि मेरे बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय अमृत वेला, सवेरे सवेरे सब लोग जब सोए हुए हैं, तमोगुण का प्रभाव प्राय लोप है, सत्वगुण के प्रभाव में अमृत वेले उठ करके बाबा से वरदान लेते, झोली भरते, मिलन मनाते, शक्ति लेते और उसके बाद मनसा सेवा करते। कितने भाग्यशाली हैं अगर बाबा के स्नेही बच्चे बाबा की इस पहली आज्ञा का पालन करते हैं, तो कभी भी माया उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि ये आज्ञाएं ही बाबा की छत्र छाया बन जाती हैं। आज्ञाओं में कभी भी मन मत और परमत मिक्स नहीं करना, कभी भी बहानेबाजी नहीं करना। दूसरी आज्ञा बाबा की मिली, बच्चे सवेरे सवेरे ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो। आज बाबा की आज्ञा इस रूप में थी कि तुम्हारी लिंक सदा जुटी रहे, लिंक नहीं टूटनी चाहिए। कहां भी रहते हो तुम्हें पढ़ाई मिलती रहेगी, मुरली मिलती रहेगी, मुरली ही हमारी पढ़ाई है। तो अमृत वेले योग के बाद कई स्थानों पर मैंने देखा, विदेश में भी सवेरे 4 से 4:45 बजे तक योग करते हैं और 4:45 बजे से 5:30 बजे तक मुरली सुन लेते, 5:30 बजे छुट्टी। विदेश में ऐसे कई स्थानों पर चलता है, यहाँ तो बाबा ने हम सबको बीच में गैप दे दिया। उनको तो कितना मैं कहता था, ये तो आप बहुत बड़ा त्याग करके आते हैं। कुछ दिन पहले मैं दुबई की तरफ गया था, वहाँ रोज सवेरे का क्लास 4 बजे सब आ जाते और 4:45 बजे तक योग करके उसी समय मुरली सुनते, 5:30 बजे क्लास खाली, उसके बाद सब जा करके तैयार होते या अपनी अपनी सेवाओं में लग जाते। तो ये भी बाबा ने नियम बना करके दिया है और नियम में बहुत बड़ा बल है। जो नियम को यथार्थ विधि पूर्वक पालन करते हैं उनके ऊपर बाबा का अटूट प्यार होता है। तो बाबा के प्यार का अनुभव करने के लिए जो बाबा ने नियम बना करके दिए हैं उनको पालन करना जरूरी है। फिर तीसरा नियम, तीसरी आज्ञा बाबा ने बताई है कि बच्चे संग दोष से अपने आप को बचा करके रखना। संग तारे कुसंग डुबोए, संग की बहुत संभाल करनी है। अगर कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव बोलने वाले सोचने वाले आपके संग में उठते हैं बैठते हैं रहते हैं, तो उनके नेगेटिव वाइब्रेशन, उनकी नेगेटिव वृत्तियां, उनके ऐसे व्यर्थ बोल का प्रभाव उनके संग का रंग लग सकता है। इसलिए संग की बहुत परहेज करना, सत्संगी बनकर के रहना। सत्य कहते हैं बाबा को, गॉड इज ट्रुथ, बाबा ही सत्य है। तो ऐसे सत्संगी सदा कर्म योगी बन करके रहना, बुद्धि का संबंध बुद्धि का संग एक बाबा के साथ जुटा रहे, सत्संगी बन जाएंगे। और चौथी आज्ञा, कुछ समय से सुन रहे हो मुरली के अंदर बाबा कह रहे हैं, भोजन में भोजन के समय कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, बाबा की याद में भोजन करो, बनाओ। भोजन की शक्ति जो मन और तन को स्वस्थ बनाने वाली है, वो भोजन बहुत सात्विक और योग युक्त होना चाहिए। भोजन सिर्फ ऐसे नहीं खा लिया शरीर के लिए, लेकिन ये शक्ति देने वाला है, इसको बहुत बाबा को विधि पूर्वक भोग लगा करके खाना और खिलाना है। माता ऐसा करती हो? करती हो? जो माताएं भोग लगाती हैं, हाथ उठाओ सब। अच्छा, देखना, अगर न लगाते हो तो नियम बना लेना। गुजरात में तो ये वरदान है, गुजरात की धरणी को ये वरदान है, जो परिवार के परिवार ज्ञान में चलते हैं। और जब पूरा परिवार एक मत होता है तो वहां भोग लगाना सहज होता है। अगर एक चलता हो दूसरा न चलता हो तो भोग लगाने में भी दिक्कत हो जाती है, क्या किसके लिए बनेगा पता ही नहीं चलता। लेकिन भोग इतनी शुद्धता से बनाया जाए, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम से न बने, बाबा के लिए भोजन बन रहा है, तो कितनी शुद्धता पवित्रता विचारों की, कोई की दृष्टि भी उस पर न पड़े। जब तक बाबा ने नहीं खाया तब तक हम नहीं खाएंगे, बाबा को खिला के ही खाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा नियम है, जिसने इस नियम को यथार्थ पालन किया है। बाबा एक बार बड़ी रमणीक मुरली चला रहे थे कि बच्चे तुम बाबा को जब भूल जाते हो तो बीच में माया खा लेती है, और माया खा लेती इसलिए वो पहलवान बन जाती है, फिर हैरान करती है। कहा था ना कुछ दिन पहले मुरली चली थी। इसलिए भोजन खाते समय बाबा भूले नहीं, ऐसे नहीं एक मिनट बाबा को याद किया फिर भूल गए। पूरा टाइम बाबा की याद में रह करके खाना तो शक्ति देगा और आत्मा बलवान बन जाएगी, माया आए ही नहीं। और पांचवी बात बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे शाम के समय मनसा सेवा जरूर करो। नमाज शाम का जो समय है वो बहुत शक्तिशाली होता है, जैसे अमृत वेला वरदानी समय है, ऐसे मनसा सेवा के लिए शाम का ये समय 7 से 7:30, जो 6:30 से 7:30 बैठते हैं वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम आधा घंटा विश्व की सेवा के लिए, मनसा दान करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और इसमें योग भी अच्छा होता है और शक्तिशाली मनसा के प्रकंपन हम चारों तरफ फैला सकते हैं। और फिर बाबा को सारे दिन का समाचार दे करके रात को गुड नाइट करके, जैसे हल्की ड्रेस पहनते हैं ऐसे हल्के हो करके, जो कुछ भी था बाबा को सुनाया और आगे के लिए श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति ले ली, सो गए बाबा की गोदी में। तो इस प्रकार की आज्ञाएं हमारी दिनचर्या के लिए बाबा ने दी हैं। पिछली मुरली जो संडे की चली थी, सुनी है सभी ने, यही मुरली थी जो रिवाइज कर रहा हूं मैं। ऐसी ऐसी बाबा की मुरलियों को अगर हम सब ध्यान से सुनते हैं और उस पर विशेष अभ्यास करते हैं तो पूछना नहीं पड़ता है मैं क्या पुरुषार्थ करूं, बाबा सब विधियां सुनाता रहता है। तो आज हम पूरे साल का एक प्रोग्राम बनाएंगे, पिछले बीते हुए वर्ष का पुनरावलोकन करेंगे। कर सकते हैं क्या क्या बीता हमारे साथ, क्योंकि जब नया वर्ष शुरू होता है तो बड़े अच्छे अच्छे संकल्प लेते हैं, वायदे करते हैं, उमंग उत्साह में आते हैं, एक दूसरे को मुबारक देते हैं, बधाइयां देते हैं। लेकिन जब साल बीतता है तो हम कभी नजर डालते हैं कि पीछे बीता हुआ साल कितने उमंग उत्साह से बीता, कितनी कमाइयां जमा की, कितने स्टॉक भरपूर हुए, युद्ध में ही समय तो नहीं चला गया। तो आज आपके सामने मैं कुछ प्रश्न रख रहा हूं, चेक करना बीते हुए वर्ष में, इस 2014 में हम सब ने क्या क्या किया है। बहुत सूक्ष्म चेकिंग अगर करेंगे तो आपको अपना पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, किया तो सब ने कुछ न कुछ तो है। तो बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया था, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करना, तीव्र पुरुषार्थी बन करके रहना, तो पुरुषार्थ मेरा कैसा रहा। चार प्रकार की बातें पुरुषार्थ में चेक कर सकते हैं। एक बाबा कहता है कई बच्चे हैं चलने वाले, दूसरे बच्चे हैं चढ़ती कला वाले, एक चलना है एक चढ़ना है, और तीसरे बच्चे हैं उड़ती कला वाले, चलती कला, चढ़ती कला और उड़ती कला, और एक है ठहरती कला वाले, जो ना आगे बढ़ते ना पीछे हटते, जहां है वहीं खड़े हो जाते हैं। तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में जब जो भी हम कर रहे हैं, उड़ती कला है, उड़ती कला माना ही कोई भी विघ्न, कोई भी बातें, कोई भी चीज रोक नहीं सकती। प्लेन में उड़ते हैं, कितने भी बादल आ जाएं, बादलों को क्रॉस करके प्लेन ऊपर चला जाता है, आराम से उड़ता है। भले कहते हैं बेल्ट बांध लो, अटेंशन रखो, हिलेंगे डुलेंगे लेकिन डरना नहीं। तो उड़ती कला वाले बातों की परवाह नहीं करते, बादलों की परवाह नहीं करते। तो हम सभी चेक करें कि पूरे वर्ष हमारा पुरुषार्थ उड़ती कला वाला रहा, या बीच बीच में ठहरती कला हो गई, चलती कला, चलने लगे सिर्फ, या चढ़ रहे थे, चढ़ने में थकावट होती है, सांस फूलने लगती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बातें आई, उनको मैंने किस विधि से पार किया और कितने समय में पार किया, क्योंकि हमारे पास संकल्प की शक्ति है। संगम युग पर संकल्प की शक्ति है, समय की शक्ति है, जो भी शक्तियां हैं वो शक्तियां, वो खजाने किसी भी बात के कारण अधिक नष्ट तो नहीं हुए। कई लोग एक बात को हटाने में कितनी मेहनत करते, खुद भी करते हैं और दूसरों का भी समय ले लेते, ये हो गया, ऐसे हो गया, अब क्या करूं, कैसे करूं, अनेक प्रश्नों में उलझ जाते हैं। लेकिन बाबा ने हम सबको अनेक विधियां बताई हैं, तो चेक करना कि कोई भी विघ्नों ने, विकारों के या प्रकृति के या परिवार के या देह के, कई प्रकार के विघ्न आते हैं, उन विघ्नों ने मेरा समय, संकल्प, शक्तियां नष्ट तो नहीं की, और अगर की तो कितना समय किया, पार हो गए, कैसे पार हुए, कितना समय लगा। तो पुरुषार्थ का रिकॉर्ड अपना अपना चेक करना, क्योंकि पुरुषार्थ ही प्रारब्ध का आधार है। कल बाबा कह रहे थे कि कई बच्चे सोचते हैं ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, जब बाबा कहता है बना बनाया है तो इस बात में अलबेले हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध का आधार पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बनी, भले वो ड्रामा में नूंधा हुआ है, लेकिन जैसे प्रारब्ध नूंधी हुई है वैसे पुरुषार्थ भी नूंधा हुआ है, इसलिए पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं। तो हम सब ने जो भी पुरुषार्थ किया, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का, उन चारों सब्जेक्ट के पुरुषार्थ में मैं आत्मा कितनी सफल रही, चेक करूं, और पुरुषार्थ के आधार से कितनी ऊंची प्रारब्ध बनी, समय, संकल्प, श्वास कितना सफल हुआ, तन, मन, धन कितना सफल हुआ, हम इसको बहुत अंडरलाइन करके चेक करें, ठीक है, तब नए वर्ष में प्रवेश करें, ताकि नया संकल्प, नया उमंग, नया उत्साह ले सकें। दूसरी बात चेक करना है दुआओं का स्टॉक, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में दुआएं बहुत मदद करती हैं। जिस आत्मा को दुआएं मिलती हैं उसे कोई भी बात उलझाती नहीं है, मेहनत का अनुभव नहीं कराती, वो सहज योगी जीवन का अनुभव करता है, सहज संतुष्ट मणि बन जाता है। तो हम सभी चेक करें कि इस पूरे साल में 2014 में सर्व आत्माओं की, बाबा की, परिवार की, लौकिक की, अलौकिक की दुआएं जमा की, उसका स्टॉक है हमारे पास। कभी भी कोई ऐसे कर्म, ऐसी अवज्ञाएं तो नहीं हुई जो दुआओं से हम वंचित हो जाएं। चेक करेंगे तो अपने स्टॉक का पता चलेगा और उसकी निशानियां जीवन में झलकनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है पता नहीं चलता है, लेकिन वो दिखाई दें कि अगर मुझ आत्मा को दुआएं मिल रही हैं तो वो खुशी, वो संतुष्टता, प्रसन्नता, हल्कापन, वो सहज योगी जीवन अनुभव होती है। अगर दुआएं मिल रही होंगी तो कभी भी उलझेंगे, मूंझेंगे, घबराएंगे, पेपर आएगा, डरेंगे, घबराएंगे नहीं, पार हो जाएंगे। तो ये बात बहुत महीनता से सूक्ष्म में चेक करने की आवश्यकता है कि सचमुच उन दुआओं के स्टॉक से मैं आत्मा इतनी प्रफुल्लित, इतनी प्रसन्न चित्त, इतनी लाइट, इतनी खुशनुमा बनी जो कोई भी बातें आई ऐसे पार हो गई। जैसे क्या कहता है बाबा, मक्खन से बाल निकल जाए, कैसे निकल आता है, मेहनत नहीं लगती। ऐसे ही कोई भी बात आएंगी तो हर एक के सामने, कलयुग में कोई पेपर किसी के सामने ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा है क्या कोई जिसके आगे कोई पेपर आता ही ना हो, ऐसा भी कोई है? कोई के आगे शारीरिक रूप से आ रहा है, कोई के आगे मानसिक रूप से आ रहा है, रहे हुए कोई हिसाब किताब पारिवारिक रूप में है वो भी आ रहे हैं। तो तन से, मन से, संबंध संपर्क से, प्रकृति से, सरकार से, कई प्रकार से पेपर तो आ ही रहे हैं। और उन पेपर्स में पार होने के लिए इतनी शक्तिशाली आत्मा है जो उन पेपर्स को देख करके डरे और घबराए नहीं, सहज पार कर ले, पास हो जाए। चेहरे पर कोई भी चिन्ह दुख की लहर के दिखाई न दे। तो सारे साल में माताओं ने आंसू बहाए, जिस माता ने सारे साल में आंसू नहीं बहाए वो हाथ उठाओ देखो, तो कभी आंसू नहीं आए पूरे साल में, ये तो चार पांच ही पास हो रहे हैं, ऐसा है क्या? मैं भाइयों ने पास हैं, आंसू ना आया हो पूरे वर्ष, इसमें भाई ज्यादा पास हैं। लेकिन कई बार आंखों का आंसू, आंखों के आंसू पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मन के अंदर दुख की लहर आना भी तो आंसू ही है। तो अगर दुआएं मिल रही हैं तो वो खुशनुमा जीवन दुख की लहर भी आने नहीं देती। एक बार बाबा की मुरली चली थी, याद होगा कि दुख की लहर आना भी अपवित्रता है। बहुत गहरी मुरली थी कि संगम युग पर सदा सुख की, शांति की सैया पर रहना। तो चेक कर सकते हैं हम इस बात से कि पूरा वर्ष सुख और शांति की सैया पर विश्राम किया, जैसे दिखाते हैं ना विष्णु को शेष सैया पर, शेष सैया पर विष्णु को दिखाते हैं। एक नेपाल के अंदर काठमांडू में मंदिर है, उस मंदिर में विष्णु क्षीर सागर में लेटा हुआ है और उस क्षीर सागर में लेटा है, सांपों की छाया है, छत्र छाया है, शेष नाग है उसके ऊपर लेटा है और सांप ही छत्र छाया बने हुए हैं, बहुत आराम की स्थिति में, मस्त स्थिति में सोया हुआ है। तो बाबा भी अपने ब्राह्मण बच्चों को ऐसी स्थिति में देखना चाहता है, चेक करना कि पूरा ही वर्ष उस शेष सैया का अनुभव किया कि सांप है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जहर नहीं देते, जहरीले नहीं, वो सैया बन जाते, सोने का, आराम का साधन बन जाते, सुख और शांति की अनुभूति कराते। तो अगर हम सभी इन विकारों को जीत करके इन्हें सैया बना दें तो सुख और शांति पर आराम से विश्राम कर सकते हैं। तो हम सबको चेक करना चाहिए, हर एक देखना पूरे वर्ष के चार्ट में कितनी दुआएं हमने, आत्मा ने जमा की, बाबा की आज्ञाओं पर चल करके, एक दूसरे को सुख दे करके, एक दूसरे की बात में हाँ जी करके, मदद दे करके, अगर हमने दुआएं जमा की हैं तो दुआएं सुख शांति चैन का अनुभव कराती हैं, दुख की लहर आने नहीं देती, भले कैसा भी दुख का वातावरण हो। बाबा तो ये चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा उसके चेहरे पर कभी भी दुख के चिन्ह न दिखाई दें, क्योंकि दुख धाम से निकल आए ना, यह भी दुख धाम में पांव, एक पांव दुख धाम में, एक पांव सुख धाम में, ऐसा तो नहीं। बाबा ने अपने बच्चों को दुख धाम से निकाल करके संगम पर खड़ा किया है। अभी सत्ययुग में जाना, नेक्स्ट पांव हमारा सत्ययुग में है, लेकिन दुख धाम से तो पांव हटा लिया ना। इसलिए दुख धाम में कितने भी दुख हैं, और भी बाबा कई बार कहते हैं दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं कलयुग के अंदर। तो ऐसी ऐसी घटनाएं कभी कभी सुनने को मिलती हैं, जैसे दुख के पहाड़ गिर गए हों। अभी अभी सुना ना समाचार सभी ने, हर घर के ऊपर जैसे जिनके बच्चे मर गए तो उनको कितना दुख हुआ है, कितनी परेशानी, कितना रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं। तो जैसे दुख का पहाड़ गिर गया, ऐसे दुख की कई घटनाएं हर एक के सामने आती हैं। लेकिन हम सब बाबा के बच्चे मरे हुए तो ही हैं, मरे हुए ही हैं ना, इसलिए कोई दुख की लहर ना आए, कुछ भी हो जाए संसार में, तभी हम उनको सुख के, शांति के वाइब्रेशन दे सकेंगे। अगर हम भी दुखी हो गए तो हम उनको क्या सुख देंगे, क्या शांति देंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन हम अपने सुख स्वरूप स्थिति में रह करके, अपने शांत स्वरूप स्थिति में रह करके इन आत्माओं को शांति का, सुख का, जो बाबा हमारा दाता है, उस दाता से शांति दिलवा सकें। तो ऐसी स्थिति जब हमारी होगी तब तो हम दे सकेंगे। इसलिए सदा ध्यान रखना इस ब्राह्मण जीवन में, सदा सुख देते चलें, सुख लेते चलें, सदा संतुष्ट रहें, संतुष्ट करें, सदा प्रसन्न रहें, प्रसन्न करें, तो दुआएं मिलेंगी। और जिनके सामने, जिनके पास दुआओं का स्टॉक है, कितनी भी बड़ी बातें आएंगी वो ऐसे पार हो जाएं जैसे कुछ भी नहीं, ये तो खेल था, ये पार्ट था, ये पूरा हो गया। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए इस साल पूरा बीता हुआ वर्ष चेक करो, और अगर नहीं बनी है तो आगे साल के लिए संकल्प ले लो कि ऐसी स्थिति में रहेंगे, तब तो नया साल मनाएंगे ना। तो नए साल में ऐसा उमंग उत्साह लेकर के चेक करना। और तीसरी बात, बाबा हमेशा कहता है बच्चे चेक करो मेरे खाते में पुण्य की पूंजी कितनी जमा है। पुण्य की पूंजी साथ जाती है, दुआएं यहाँ समय पर साथ देती हैं, मदद करती हैं, और पुण्य की पूंजी जो जमा है वो साथ जाती है। सबके पास स्टॉक में पुण्य की पूंजी, और पुण्य की पूंजी जमा करने का साधन है गुप्त दान। कुछ भी किया जाए उसका वर्णन चिंतन न हो, बहुत गुप्त रीति से जो बाबा के कार्य में तन मन धन तीन चीजें आती है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन। तन और धन के बीच में मन आता है, देखना तन से अगर हम सेवाएं कर रहे हैं तो मन कहाँ है। अगर मन है, माना बुद्धि दिल लगा हुआ है बाबा के साथ, तो तन की सेवाओं का भाग्य बहुत ऊंचा है। तन से सेवाएं बाबा के यज्ञ में की हैं तो तन निरोगी बन जाता है, तन शीतल बन जाता है, कोई भी कर्म इंद्रियां उत्तेजित नहीं होती हैं। तन को सेवा में लगा के देखो कितनी दुआएं मिल जाती हैं। लेकिन वो सेवाएं मैं करता हूं, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, अहम आ गया तो पुण्य खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत गुप्त रीति से जो कुछ हमने इस वर्ष किया, तन से बाबा के यज्ञ में कितना किया, कर्मणा सेवाएं तन से होती हैं, तन जिसने लगाया है वो अनुभव कर सकता है कि तन कितना स्वस्थ रहता है, साथ देता है, मदद करता है। समय पर कोई काम होता है तो ऐसे नहीं पड़े हुए हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन मन से किया है तो, और अगर धन बाबा के यज्ञ में लगाया है तो कभी भी बाबा कहते हैं कमी की महसूसता नहीं हो सकती, समय पर आ जाएगा, मदद मिल जाएगी। तो तिल से धन लगाए है बाबा के कार्य में गुप्त, ऐसे नहीं तुमने कितना किया तुमने कितना किया, कई पूछने लगते हैं मधुबन में चलते हैं, आपने कितना किया आपने कितना किया। बाबा तब पूछ पूछ करके तुम अपना भाग्य क्यों गंवाते हो, जो करना है गुप्त रीति से बाबा के यज्ञ में सफल हो जाए, बाबा की सेवा में लग जाए, बहुत ऊंची भावना के साथ दिल से बाबा के यज्ञ में सहयोग देना, जो कर सकता है उतना करे, पूछने की क्या बात है। बाबा का घर अपना घर है, तो अगर गुप्त रीति से कोई तन मन धन बाबा के यज्ञ में लगा रहा है तो उसकी पुण्य की पूंजी पुण्य की कमाई जमा है। तो पूरे वर्ष में कितनी पुण्य किए हैं हमने, कितनी पूंजी हमारे पास है, क्यों जिसके पास पूंजी होती है ना, चल या अचल संपत्ति को पूंजी कहते हैं, जिसके पास पूंजी होती है वो बहुत निश्चिंत रहता है, कोई चिंता नहीं मेरे पास बहुत पूंजी है, कुछ भी हो जाए इतना है, इतना हमारे पास स्टॉक है जो हम कई पीढ़ियों को खिला सकते हैं, इतनी पूंजी जमा की है। तो अगर हमारे पास ऐसे गुप्त चल अचल संपत्ति गुणों की शक्तियों की अविनाशी जमा है तो हमको निश्चिंतता का अनुभव होना चाहिए, कोई चिंता नहीं कोई गम नहीं। कभी भी दो बातें याद रखना, बीती का चिंतन नहीं, बीता बीत जो बीत गया वो इतिहास है, बीते को कहते हैं ये इतिहास बन गया, और आने वाला जो कल है वो रहस्य है, तो क्यों उसकी चिंता करें, जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन कब अच्छा होगा जब वर्तमान अच्छा है। तो वर्तमान में जीना, वर्तमान को अच्छे से अच्छा बनाना, और उसकी अच्छी अच्छी विधियां बाबा रोज सुना रहा है, बच्चे वर्तमान में जियो, अच्छी तरह से अमृत वेले उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग करके शक्ति लो, और जो कुछ करना है वैसा करो जो एक हाथ करे दूसरे को पता न चले, गुप्त पुण्य करते चलो, अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा, वर्तमान अच्छा हो जाएगा तो निश्चित है कल जो होने वाला वो अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि बाबा हमारे को वर्तमान का रिटर्न देगा। इसलिए जो बीत गया वो इतिहास बन गया, जो है वो तो रहस्य है, इसलिए आने वाले को भी चिंता नहीं, चिंतन नहीं, क्या होगा पता नहीं कल क्या होगा, जो होगा क्या होगा अच्छे से अच्छा होगा, क्यों तो वर्तमान हमारा बहुत अच्छा है, बाबा हमारे साथ है, बाबा हमें पढ़ा रहा है, पालना कर रहा है, श्रेष्ठ मत दे रहा है, स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा का साथ है, हाथ है, तो अच्छा ही होने वाला है, गलत नहीं होगा, इतना निश्चय, और निश्चय के आधार से बहुत निश्चिंत स्थिति। तो जिनके पास पुण्य की पूंजी है चेक करना पूरे वर्ष में मुझ आत्मा ने कौन कौन से ऐसे कर्म किए, प्रश्न है ये, कौन कौन से ऐसे कर्म किए एक साल के अंदर जिससे मेरी पुण्य की पूंजी बढ़ती गई स्टॉक में जमा है, बाबा के बैंक में जमा है, और बाबा उसका रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है, ब्याज सहित देगा, है सबके पास पुण्य की पूंजी। तो चेक करना कि तीनों खाते पुरुषार्थ दुआएं और पुण्य, ये स्टॉक में कितना जमा है और इसके आधार से मैं आत्मा कितनी निश्चिंत जीवन जी रही हूं। बाबा ज्ञान की कई ऐसी पॉइंट्स हम सबको रोज सुनाता है कि अगर उन ज्ञान की पॉइंट्स को हम गहराई से चिंतन करते हैं तो स्थिति बड़ी अच्छा लडोल एक रस बन जाती है। जैसे बाबा ने कल कहा, बच्चे अगर नथिंग न्यू की स्मृति रहती है तो स्थिति अच्छा लडोल एक रस बन जाती है। नथिंग न्यू माना कोई भी बात हो रही है सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, व्यर्थ चिंतन में समय न जाए, मेरे साथ ऐसा क्यों होता, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, और किसी के साथ भी घट रहा है तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है, न्याय ठीक नहीं है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कई ऐसे प्रश्न उठते हैं जो प्रश्न प्रश्न चिन्ह बना देते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह न उठे, कोई भी प्रश्न न उठे, सदा प्रसन्न चित्त स्थिति रहे, ड्रामा कल्याणकारी है। हर आत्मा का अपना विशेष पार्ट है और हर आत्मा ने जो कुछ किए हैं कर्मों के अनुसार अभी हरेक को चुकतू करना है। अंतिम समय में सबके हिसाब किताब चुकतू होने हैं, तो इसलिए कोई के हिसाब किताब को देख करके क्या हो, दुख की लहर ना आए, गम की लहर ना आए, प्रश्न न उठे ऐसा क्यों हो रहा है, तब हम प्रसन्न चित्त स्थिति में रह सकते हैं। तो सभी चेक करो, और अभी 10 दिन है, टाइम है, चेक करो और चेंज करो। नए साल के लिए नया उमंग, नया उत्साह, नए पुरुषार्थ की लहर हो। तो हम लोगों ने इस बार ही सोचा है, हमारी मीटिंग में दादियों ने प्लान किया है कि इस 2015 को हम सभी मिलकर के तपस्या वर्ष के रूप में मनाएं। पूरा 12 मास सेवाएं तो बाबा करा रहा है, खूब हो रही है, विस्तार हो रहा है, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा अंदर से लक्ष्य रखे कि मुझे कम से कम रोज 8 घंटा तपस्या करनी है। तपस्वी मूरत बन करके रहना है, हर संकल्प में दृढ़ता हो, हर संकल्प में एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा से अटूट संबंध और प्यार हो, बाबा की श्रीमत सिर माथे पर हो, मन मत परमत से मुक्त हो करके हम सब रहें। 2015 को हम सभी तपस्या वर्ष के रूप में मनाएं। जनवरी मास के लिए तो डायरेक्शन मधुबन से भेज दिए गए हैं, पूरा ही जनवरी मास बाबा का मास है, अव्यक्त मास है, वरदानी मास है। इस मास में सभी अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने का संपूर्ण ध्यान दें, इसलिए अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए पूरे 31 दिन का होमवर्क मुरली के नीचे भी लिखा गया है और अलग से भी कॉपी भेजी है। तो सभी लक्ष्य रखना, अभी इस बार तो 1 जनवरी को आप सब अपने अपने सेंटर पर अधिकतर पहुंच जाएंगे, तो 1 जनवरी से ही हम ऐसा लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ करेंगे ताकि 2015 वर्ष पूरा ही वर्ष हम सब निर्विघ्न रहे, निर्विघ्न वायुमंडल बनाएं और बाबा की जो आस्थाएं हैं कि एक एक मेरे बच्चे से बाप दादा का साक्षात्कार हो, एक एक की सूरत बाबा की सीरत दिखाए, तब प्रत्यक्षता होगी, इन ब्राह्मणों से ही बाबा दिखाई देने लगेगा। तो हम सब ऐसा लक्ष्य रख करके अभी से ही संकल्प लें कि हम नया वर्ष इस तरह से मनाएंगे और बीता जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगा करके अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा करके हम सब बाबा की पालना का रिटर्न करेंगे। ठीक है, ऐसा लक्ष्य रखेंगे ना, करेंगे सभी। तो अभी जनवरी मास आ रहा है, हम सभी लक्ष्य रख करके इस तरह से उमंग उत्साह का संकल्प लें और बाबा की आशाओं को पूरा करें। ओम शांति।
कुटिया।